हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Thank you. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निखाय गौर हरि बोल हरि बोल निखाय गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद पांचवा अध्याय प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप श्लोक संख्या 19। कालचक्रम भ्रमे तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयत् जगत्। बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है, सारा बोर्ड पड़ा है। सर्वं ने निष्कर्षयत् जगत् स्वतंत्रं अबुधस्य इह किम् असत् कर्मभिः भवेत्। कालचक्रम भ्रमे तीक्ष्णम् सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतंत्रम् अबुद्धस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। कालचक्रम भ्रमे तीक्ष्णम् सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतंत्रम् अबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। कालचक्रम भ्रमे तीक्ष्णम् सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतंत्रम् अबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। किम सत्कर्म भेर भवेत्।
कालचक्रम भ्रमे तीक्ष्णम्
चक्रम भ्रमे तीक्ष्णम्
सर्वं
निष्कर्षयत् जगत्
स्वतंत्रम्
अबुधस्येह किम सत्कर्म भेर भवेत्। माताजी बोले, कालचक्रम भ्रमे तीक्ष्णम् सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतंत्रम् अबुधस्येह किम् असत्कर्म भिर्भवेत्। कालचक्रम भ्रमे तीक्ष्णम् सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतंत्रम् अबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। कालचक्रम् नित्यकाल का चक्र भ्रमे स्वतः घूमता हुआ तीक्ष्णम् अत्यंत तेज सर्वं समस्त निष्कर्षयत् हांकते हुए जगत संसार स्वतंत्रम स्वतंत्र तथा कथित विज्ञानों तथा दार्शनिकों की परवाह न करते हुए अबुधस्य काल के नियम को न जानने वाले का इह इस भौतिक जगत में किम असत कर्म भी भवेत। क्षणिक सकाम कर्मों में लगने से क्या लाभ। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। नारद मुनि ने तेज छुरों तथा वज्रों से बनी एक भौतिक वस्तु की बात की थी। हर्यश्वों ने इस रूपक को इस प्रकार समझा। नित्य काल बहुत ही तीक्ष्णता से गति करता है, मानो छुरों तथा वज्रों से बना हुआ हो। यह काल अबाध रूप से तथा पूर्णतया स्वतंत्र होकर सारे जगत के कार्यों का संचालन करता है। यदि मनुष्य नित्य काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता तो वह क्षणिक भौतिक कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य। यह श्लोक क्षौर पव्यम स्वयं भ्रमी शब्दों की व्याख्या करता है, जो नित्य काल की कक्षा का विशेष रूप से द्योतन करने वाले हैं। कहा जाता है कि काल तथा लहरें किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करते। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित के नैतिक उपदेशों के अनुसार आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्णकोटिभिः न चेन्निरथकर्थं नीतिः काच हानिस्ततोधिका। करोड़ों डॉलर देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यदि वह अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ में गंवा देता है तो कितनी बड़ी क्षति होती है। जीवन के लक्ष्य को न समझते हुए पशु की तरह जीवन बिताते हुए मनुष्य मूर्खतावश यह सोचता है कि शाश्वतता नाम की कोई वस्तु नहीं है और उसका 50-60 या हद से हद 100 वर्षों का जीवन ही सब कुछ है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। काल शाश्वत है और इस भौतिक जगत में फोन कृपया बंद कर दीजिए। कहाँ थे हम? काल शाश्वत है और इस भौतिक जगत में मनुष्य अपने शाश्वत जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यहां पर काल की उपमा जब मंदिर में आते हैं तो फोन बंद करके आना है, ठीक है? यहां प्रवचन में कथा होनी चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए, ना कि फोन बार बार बजते रहे। बंद कर दीजिए, अभी बजते मत रहने दीजिए, बंद कर लीजिए उसको। यहां पर काल की उपमा तेज छुरे से दी गई है। छुरा तो बाल मूंढने के लिए होता है, किंतु यदि ठीक से नहीं चलाया जाता तो गजब ढा सकता है। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि अपनी आयु का दुरुपयोग करके विपत्ति न खड़ी करे। उसे अत्यंत सावधान रहकर अपने जीवन की अवधि का उपयोग आध्यात्मिक साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के लिए करना चाहिए। अनुवाद को दोहराइएगा। नित्य काल बहुत ही तीक्ष्णता से गति करता है, मानो छुरों तथा वज्रों से बना हुआ हो, यह काल अबाध रूप से तथा पूर्णतया स्वतंत्र होकर सारे जगत के कार्यों का संचालन करता है। यदि मनुष्य नित्यकाल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता तो वह क्षणिक भौतिक कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत दिनों के बाद अभी रविवार के सत्संग कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु सारे भक्तों को मंदिर में आना एक ही समय संभव नहीं है कोरोना के महामारी के नियमों के कारण। इसलिए दो तीन सत्संग मंडल के सदस्यों को ही हरेक रविवार को अनुमति दी जाएगी यहाँ पर आने के लिए। इस तरह से क्रम से सभी को अवसर मिलेगा इस रविवार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो खैर, आप में से जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है, और इंटरनेट के द्वारा जो देख रहे हैं आप सबका भी स्वागत है। कृपया याद रखिए कि यहाँ जब आते हैं तो नियमों का पालन करना होगा। जो प्रवचन दे रहे हैं वो तो रख नहीं सकते, लेकिन कृपया आप अपने मुंह पे रखिएगा, और केवल नीचे नाक के नीचे रखने से कुछ लाभ नहीं है, नहीं पहनने के बराबर है। तो कृपया सही तरह से रख लीजिए। यदि आपके पास नहीं है पहना हुआ तो पहन लीजिए। अभी तक पूरी तरह से खतरा मिटा नहीं है, यद्यपि परिस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी सावधानी की आवश्यकता है। तो आपके योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। काल क्रम से ऐसे महामारियां आती हैं और जाती भी हैं। तो यहाँ काल है विषय आज का, और कौन उपदेश दे रहे हैं? श्री नारद मुनि। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में यह प्रसंग आता है कि नारद मुनि दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश देते हैं। वो तपस्या करने हेतु जब गए थे तो नारद मुनि उनसे मिले, और फिर नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया, वैराग्य के प्रति उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इस उपदेश के अंतर्गत उन्होंने काल शक्ति का वर्णन किया, और एक बहुत ही अद्भुत एक उपमान उन्होंने प्रदान की। काल की तुलना उन्होंने एक ऐसे घूमते हुए चक्र से तुलना की जो कि छुरों और वज्रों से बनी हुई है,
धार वाले, तेज धार वाले छुरों और वज्रों से बनी हुई है। और जब ये घूमता है ये चक्र, तो क्या होता है, जैसे धार वाले चक्र के स्पर्श में कोई आए तो क्या होगा, उसका सब कुछ कट जाएगा ना। बहुत सावधान रहना पड़ता है। हमें याद है अनेक वर्ष पूर्व यहाँ शायद जन्माष्टमी का उत्सव था या रथ यात्रा में लोग आए हुए थे, तो मंदिर के सीढ़ियों के नीचे एक पंखा लगा हुआ था, तो किसी ने गलती से उस पंखे के जो आवरण के अंदर अपनी उंगली डाल दी और उंगली अचानक थोड़ी सी कट गई ऊपर से। बहुत ज़्यादा तो नुकसान नहीं हो, लेकिन उंगली का अग्रभाग कट गया। और उस समय हमारे डॉक्टर भक्त सब उपस्थित थे, तो उन्होंने खैर उपचार तो किया, परंतु जब ऐसे तेज गति से एक पंखा भी चलता है जिसमें इतना धार भी नहीं होता है, जो छुरा नहीं होता है, वज्र के समान नहीं होता है, फिर भी इतना असर होता है, तो कल्पना कीजिए यदि कोई धार वाली जैसे तलवार हो, बहुत ही धार वाले तलवार तेज गति से चल रहे हो और कोई उनका स्पर्श करे तो क्या होगा, पूरी तरह से चूर हो जाएगा, तो छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे उसके। ठीक उसी प्रकार से ये काल चक्र जो है ये कार्य करता है इस दुनिया में। तो यहां पर चेतावनी देना चाहते हैं नारद मुनि दक्ष प्रजापति के पुत्रों को और उनके द्वारा हम सबको कि काल बहुत खतरनाक है और काल चक्र के प्रवाह में हम सब हैं, उसके प्रभाव में हम हैं, और किस प्रकार से हमें बच के चलना चाहिए ये बता रहे हैं। सर्वप्रथम हम ये समझना चाहिए कि ये काल चक्र है क्या, ये काल है क्या। काल का अनुभव तो हम सबको है, जैसे हम कहते हैं कि अमुक समय पर यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा या इस समय पर यह रेलगाड़ी छूटेगी, परंतु ये काल नहीं है, ये काल की गणना है। हमारे घड़ी में जब हम कहते हैं देख के कि समय क्या हुआ, हम कहते हैं 2 बज गए, 1 बज गया, 3 बज गए, तो समय क्या हुआ ना, इस समय की गणना हो रही है, परंतु ये समय है क्या, ये काल है क्या। काल के प्रभाव को हम जानते हैं, काल के प्रवाह को हम पहचानते हैं, हम सब बचपन से ही इसका अनुभव करते आए हैं कि काल बह रहा है और बहते हुए हम सबको साथ में खींचकर ले जा रहा है। तो वास्तव में ये काल क्या है, ये बहुत बड़ा एक दार्शनिक प्रश्न है। इतना आसान नहीं कि काल क्या है, 2 बज गए, नहीं, ये एक लक्षण है काल के प्रवाह का, परंतु वास्तव में ये है क्या जो बह रहा है। हम अनुभव करते हैं कि हमारा कभी बचपन, हमारी बचपन की अवस्था थी कभी, तो फिर आयु बढ़ गई, आयु बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हम लोग काश कभी कभी विचार करते हैं जब बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है तो व्यक्ति सोचता है काश मैं थोड़ा जवान हो जाता, कितना अच्छा होता, युवा अवस्था में कितना आनंद आता, हम नाचते कूदते इधर उधर भागते, अभी हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या केवल शोक करने से, उदास होने से कि अरे अभी मैं बूढ़ा हो गया, अब युवा अवस्था चली गई, ऐसे करने से तो कुछ होगा नहीं, हमारी युवा अवस्था लौट कर तो आएगी नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम सब ये काल चक्र के प्रभाव में हैं, इसके चंगुल में हम सब फंसे हुए हैं, इसके नियंत्रण में हम पूर्णतया हैं, फंसे हुए हैं। तो काल जो है ये भौतिक जगत में परम नियंत्रक है, नियंत्रक अर्थात जो सबको वश में कर लेता है। और कोई भी काल की चंगुप से पलायन नहीं हो सकता है। भले भागने का प्रयास क्यों न करे, परंतु काल के प्रभाव से हम दूर नहीं भाग सकते। प्रयास तो खूब चलता है सबका। हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है और बढ़ते आयु का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, तो हम इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। बाल सफेद हो जाते हैं तो बालों में रंग लगाते हैं, काला रंग लगाते हैं कि नहीं, सच बोलिए, लगाते हैं ना। और तरह तरह के बुढ़ापे को, बुढ़ापे के जो असर हैं वो दिखाई नहीं पड़े दूसरों को, इसलिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चेहरे पे वो मुरझा जाते हैं तो हम तरह तरह की चीजें लगाते हैं ताकि चेहरा बिल्कुल ठीक लगे, बुढ़ापा के लक्षण दिखाई ना पड़े, ताकि ताकत जल्दी आ जाए हमारे शरीर के अंदर। प्रयास तो हमारा खूब रहता है कि काल के प्रभाव को हम टक्कर दें, परंतु क्या करें, कोई भी पलायन नहीं कर सकता काल से, सब काल के प्रभाव में फंसे हुए हैं। और ये काल का प्रभाव कैसे होता है, काल बहता कैसे है, एक तरफ ही प्रवाह है, जैसे नदी का होता है ना। आपने कभी बहते हुए नदी को देखा है जिसमें बहुत सारा जल हो और बहुत तेज गति से नदी बह रही हो, ऐसे आपने देखा होगा अवश्य। हम लोग जब हिमालय में यात्रा में गए थे, बद्रीनाथ, यमुनोत्री आदि, तो आपने गंगा या यमुना को बहते हुए देखा होगा, कितने तेज गति से नदी बहती है। तो आपने कभी ऐसे देखा है कि पहाड़ों से नीचे ऊपर जमीन में नदी बहते हुए आती है और अचानक उल्टी दिशा में नदी बहकर जाती है, कभी देखा है आपने ऐसे? नहीं, क्योंकि नदी का प्रवाह एक तरफी होता है। ठीक उसी प्रकार से ये काल की तुलना भी एक नदी से की जाती है, तो काल नदी का प्रवाह भी एक तरफी होता है। तो नदी कहां से बहती है, नदी का जो स्रोत होता है पहाड़ों में, वहां से प्रारंभ होकर धीरे 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 से समतल जमीन में आके फिर वो समुद्र की ओर जाती है नदी, और वहां पर नदी में फिर नदी समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह से जब नदी के स्रोत से लेकर समतल जमीन से लेकर समुद्र तक, ये एक इसकी यात्रा है। तो क्या कभी ऐसे होता है कि जो नदी जब समुद्र तक पहुंच गई तो अचानक उसने सोचा कि अरे मुझे पहाड़ में जाना है, हाँ, और मैं अपने आप को रोक लूंगी और पीछे चलो उल्टी दिशा में वापस पहाड़ की ओर जाऊंगी, ऐसे कैसे होता है? कभी नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जब काल बहता है और हम बचपन से लेकर युव अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक जाते हैं, तो पीछे लौट के नहीं आ सकते हैं। और ये प्रवाह जो है, ये काल का प्रवाह विभाजन पैदा करता है हमारे जीवन में। किस तरह का विभाजन? तीन भाग होते हैं हमारे जीवन में किसी भी क्षण में। वो तीन भाग कौन से हैं? एक है भूतकाल, जो बीत चुका है, दूसरा है वर्तमान काल, जो इस समय हो रहा है, और तीसरा भविष्यकाल, जो होने वाला है। अभी एक क्षण का अनुभव हम कर रहे हैं, एक क्षण में वो क्षण बीत जाता है, दूसरा क्षण आ जाता है, अब वो बीता हुआ क्षण भूतकाल बन जाता है, अब ये वर्तमान काल हो जाता है, ये वर्तमान भी भूत हो जाएगा, और जो भविष्य है वो वर्तमान होगा, जो वर्तमान है वो भूत हो जाएगा। इस तरह से काल का प्रवाह हमें ढकेलते हुए ले जा रहा है। आपने कभी ऐसे तेज गति से बहने वाले नदी में स्नान करने का प्रयास किया है? आप में से कितने भक्तों ने ऐसे स्नान किया होगा? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, तो आपको सावधानी रखनी पड़ी कि नहीं? आपने क्या किया उस समय? वो थोड़े नदी के तट पर जंजीर आदि होते हैं, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में रहते हैं, ताकि लोग बह के नहीं जाएं। वो जंजीर को नहीं पकड़ेंगे तो कलकत्ता पहुंच जाएंगे मुफ्त में, कोई टिकट विकट की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बस वहां चले जाओ और बह के चले जाओ। और वास्तव में नदी के तट में जल का प्रवाह अधिक रहता है, बीच के मुकाबले, नदी के बीच के मुकाबले तट में ज्यादा प्रवाह रहता है। और इसलिए जो अंदर जाते हैं यदि वो सावधान नहीं रहे तो बह के जाएंगे, और यदि नदी का प्रवाह बहुत तेज हो तो अंदर भी नहीं जा सकते। और कई बार ऐसे होता है कि लोग पानी के अंदर जाते हैं और बह जाते हैं। और कितनी बार ऐसे बाढ़ अचानक आ जाते हैं, आपने देखे भी होंगे आजकल वीडियो इधर उधर आते हैं कि अचानक से बाढ़ आ गया और कोई युवक युवतियां आदि सब कुछ पानी में कुछ खेल रहे होते हैं, अचानक बाढ़ आ जाता है तो उनको बहा के ले जाते हैं और कोई भी संभावना नहीं रहती है बचने के लिए, इतना तेज प्रवाह। तो ऐसे जब तेज प्रवाह से बांध पानी बह रहा है नदी के अंदर, तो क्या कोई संभावना है कि हम उल्टी दिशा में हम तैर के जाएं? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से असंभव है कि हम काल के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में हम चलने का प्रयास करें। इसलिए हमने कहा कि ये काल की नदी जो है ये एक तरफी प्रवाह बहने वाली नदी है और सबको बहाकर ले जा रही है, कोई भी ऐसे नहीं है जो बच सकता है। अक्रूर जी दशम स्कंद में कहते हैं ह्रियमाण काल नद्या, ये काल की नदी है, तो काल की नदी के द्वारा काल नद्या क्या ह्रियमाण है, सारे जीव जो हैं बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। कोई एक भाग्यशाली जीव होगा जो भगवान की कृपा से तट पे पहुंच जाता है, अन्यथा सारे जितने जो भी लोग बह रहे हैं वो तो बह के चले जाएंगे, उनका विनाश तो निश्चित है। इसी तरह से ये काल की नदी है, इसे काल चक्र कहिए, काल नदी कहिए, चाहे चक्र का घूमना हो या काल नदी का बहना हो, बहुत जबरदस्त होते हैं, विनाशकारी होते हैं। काल का प्रभाव इस दुनिया में क्या है, विनाश करना। श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में बताते हैं कि काल के छह प्रकार के प्रभाव होते हैं, छह प्रकार के परिवर्तन काल कराता है सब जगह। पहला है जन्म, जन्म के बाद विकास या वृद्धि, विकसित होते हुए परिपक्वता की अवस्था की प्राप्ति होती है, परिपक्वता के बाद गौण उत्पादन, मतलब कोई ना कोई वस्तु उसमें से निकलते हैं, जैसे पेड़ है उसमें से फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, कोई मनुष्य है उनमें से वो बच्चों को जन्म देते हैं, और उसके बाद घटन क्षय, जैसे बुढ़ापा आ जाता है ना तो क्षय होने लगता है सब कुछ, अंत में मृत्यु, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये छह परिवर्तन ये स्तर होते हैं जिनमें से संसार में हर किसी को हर वस्तु को गुजरना पड़ता है, इसलिए हम इस तरह से फंसे हुए हैं इस प्रकार से। और कोई भी काल का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी काल को पराजित नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता है, चाहे वो कीड़ा हो क्यों ना हो, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, वो देवी देवता क्यों ना हो, ब्रह्मा जी क्यों ना हो, ये ब्रह्मांड में भौतिक जगत में जो भी कोई रहते हैं वो काल के प्रभाव में हैं। यद्यपि हम सब चाहते हैं कि हम अमर रहें, हमारी मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना हो, परंतु ऐसे नहीं होता। हम तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं कि हम कल ऐसा करेंगे, परसों वैसा करेंगे, और हम इस चीज के ऊपर जीत प्राप्त कर लेंगे और बड़े बड़े राजा भी हुए हैं इतिहास में, उन्होंने भी दुनिया के ऊपर भरे पराजय प्राप्त कर लिया हो, विश्व सम्राट भी क्यों न बने हुए हों, परंतु कितने समय तक रहेंगे वो? थोड़े समय के बाद काल का प्रभाव उन पर भी पड़ेगा, वो भी मिट जाएंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, वो भी हार जाएंगे, मरे भी नहीं तो। तो इस तरह से काल के सामने हम टक्कर नहीं लगा सकते। काल के प्रभाव में आकर क्या होता है कि हमारे दुनिया के अंदर जितने भी इच्छाएं हैं, जितने भी हमारी कामनाएं हैं, सब सपने हैं, वो सब टूट जाते हैं, सब भंग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे खेल रहे होते हैं और अचानक माँ के बोलती है, अरे बंद करो, चलो भोजन के लिए चलो। बोलते अरे क्या, हम इतना अच्छा खेल हमारा हो रहा था, आके हमको रोक लिया, मजा किरकिरा कर लिया हमारा। इसी प्रकार से हम लोग सब खेल रहे हैं, सारे बद्ध जीव जो हैं सब खेल खेल रहे हैं। जैसे समुद्र के तट पे जो बालू होता है या रेती होती है, तो बच्चे वहां पे तरह तरह के रेती के महल आदि सब बनाते हैं। आपने भी शायद बचपन में किया होगा ऐसे, हमने तो किया है, भरपूर किया है, समुद्र के तट में जाके बहुत कुछ बनाना। परंतु जब समुद्र की लहरें आ जाती हैं तो एक क्षण में हमारा महल खत्म, तब हम रोने लगते हैं, अरे क्या हो गया, मैंने महल बनाया था, अब महल खत्म हो गया। तो वैसे छोटे बच्चे जो खेलते हैं समुद्र के तट पे, वो रेती के महल आदि सब बनाते हैं उनमें, और जो बड़े लोग होते हैं जो वास्तविक इमारतें बनाते हैं, महल आदि बनाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो रेती के महल होते हैं उनको पानी की लहरें खत्म कर देती हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उनके जो तथाकथित असली महल होते हैं उनको काल के लहरें खत्म कर देती हैं। तो कोई भी टिक नहीं सकता है। तो काल मजाक किरकिरा करने वाला एक काम करता है। हम सोचते हैं कितना आनंद लेंगे हम, बहुत कुछ करेंगे, सुख पाएंगे, ऐसी योजना में हम सफल हो जाएंगे, परंतु अचानक काल आके अपना कांड कर देता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए संसार के भीतर ये काल शक्ति जो है रस को कड़वा बना देता है। हम सब रस चाहते हैं ना संसार में, परंतु ये कड़वा हो जाता है काल के प्रभाव में। और हमारे योजनाओं में और हमारे ज्ञान में, हमारे कार्यों में एक अवरोध बन जाता है। अवरोध अर्थात एक अड़चन जो बीत जाता है, उसकी याददाश्त हमें नहीं रहती है। थोड़ा बहुत इधर उधर यहां वहां कुछ याद रह जाता है, कल जो हुआ वो भी। अब यदि हमें कोई पूछे कि ठीक इस समय पर आप क्या कर रहे थे, तो शायद हमें सोचना पड़ जाए, अरे मैं क्या कर रहा था, अच्छा हाँ ये समय ये कर रहा था। तो जो बीते हुए साल हैं, हमारे बचपन के साल हैं, उसको हम कैसे याद कर पाएंगे? और पूर्व जन्मों के हमारे जो यादें हैं वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो इस प्रकार से जो भूतकाल में हो चुका है तो वो हमारे पहुंच के बाहर है, थोड़ी बहुत पहुंच है जहां तक हमारी स्मृति शक्ति है। जो वर्तमान काल में हो रहा है उस समय भी हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, जो हमारे आंखों के सामने है उतना ही हम देख सकते हैं, थोड़ा कुछ हम सुन सकते हैं, परंतु इस समय दूसरे जगह में क्या चल रहा है, इन दीवारों के उस पार में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। और जो भविष्य काल में होने वाला है वो तो पता है ही नहीं। थोड़ा कुछ पता है कि हमारी मृत्यु एक न एक दिन होने वाली है, थोड़ा कुछ पता होता है, बाकी नहीं। तो ये काल जो है, काल चक्र, ये तीन भाग जब करती है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और इस प्रकार से बंधन पैदा करती है, अवरोध पैदा करती है, और इसलिए हम हमारे पूर्व जन्मों को याद नहीं कर पाते हैं, परंतु हम सब यहां पर हैं, काल शक्ति के अधीन हैं हम, काल चक्र के, काल नदी के। परंतु क्या भगवान भी इसी प्रकार से काल के प्रभाव से, काल के प्रभाव में बह जाते हैं? नहीं, हम भूल जाते हैं या नहीं जानते हैं भूतकाल और भविष्यकाल, परंतु भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। कि हे अर्जुन, वेद अहम, मैं जानता हूं, समतीतानि, जो बीत चुका है मैं जानता हूं, वर्तमानानि च अर्जुन, जो वर्तमान में चल रहा है वो भी मैं जानता हूं, भविष्याणि च भूतानि, भविष्याणि च, जो भविष्य में होने वाला है वो भी मैं जानता हूं, परंतु भूतानि माम तु वेदन कश्यति, तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूं, भूत वर्तमान भविष्य। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि काल भगवान के लिए कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकता है, केवल हमारे लिए ये होता है। तो हम लोग यहां पर कर्म करते हैं ना, किस प्रकार के कर्म करते हैं, तरह तरह के कर्म करते हैं, कोई अच्छे कर्म, कोई बुरे कर्म, कभी पाप कभी पुण्य। तो हम ये जब कर्म करते हैं किसके द्वारा प्रेरित होकर करते हैं, प्रकृति के द्वारा। इन कर्मों को करने के लिए अनुमति किनकी चाहिए, परमात्मा की चाहिए, भगवान कृष्ण जो हमारे हृदय में विराजमान है। और किनके निकस के नियंत्रण में ये कार्य हो रहे हैं, काल शक्ति के। तो संक्षेप में कहा जाए तो जितने भी जीव इस भौतिक जगत में हैं वो प्रकृति से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, भगवान के द्वारा अनुमति प्राप्त करके कर्म करते हैं, और काल शक्ति के प्रभाव में आके कर्म करते हैं। तो काल के चंगुल में हम सब फंसे हुए हैं। भगवद गीता में जैसा कि आप सब जानते हैं 5 विषय हैं प्रमुख। कौन से हैं वो 5 विषय? जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म। और इन 5 विषयों में केवल एक विषय है जो शाश्वत नहीं है, वो कौन सा है? कर्म। बाकी 5 विषय जो हैं वो शाश्वत हैं, अर्थात वो नश्वर नहीं है, उनमें से काल भी है। तो काल एक ऐसे शक्ति है जो नश्वर नहीं है। इसलिए हम लोग काल के प्रभाव में आके हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम नहीं रहते, हमारा शरीर नहीं रहता, आत्मा तो रहती है, परंतु शरीर बदलने के कारण हम भूल जाते हैं कि पूर्व जन्म में हम कौन थे, और उसके पहले जन्मों में भी हम कौन थे, बहुत सारे जन्म हमने ले लिए। जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परंतप। हे अर्जुन, तुमने और मैंने बहुत सारे जन्म बिता लिए हैं, मुझे इन सारे पूर्व जन्मों का स्मरण है, परंतु तुम्हें नहीं है। तो भगवान कृष्ण में और जीव में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और काल के परे सदैव रहते हैं, और इस धरती, इस भौतिक जगत में रहने वाले जो जीव होते हैं वो काल और प्रकृति के अधीन सदैव रहते हैं। तो ये बड़ा अंतर है। तो भगवान ऐसे काल और प्रकृति के अधीन क्यों नहीं हो जाते? जब हम अधीन रहते हैं, हम काल और प्रकृति के प्रभाव में आते हैं, तो भगवान कृष्ण क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? क्योंकि काल और प्रकृति ये दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, और भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान है। परम शक्तिमान का अर्थ है कि उनकी शक्ति अपार है, असीमित है, अचिंत्य है। और इतना ही नहीं, परम शक्तिमान का तात्पर्य यह भी है कि सारी शक्तियां सदैव भगवान के वश में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि शक्ति भगवान के हाथ से बाहर निकल जाती है। कभी कभी क्या होता है, खास करके जो तरुण लोग होते हैं, जोर से अपना मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं, तेज गति से चलते हैं। ये गाड़ी या मोटरसाइकिल क्या है? एक शक्ति है ना। तो हम इस शक्ति का प्रयोग करते हैं और जब तेज गति से जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, नहीं? बड़ा उल्लास होता है, रुम, हम दूर से जाते हैं चला के। परंतु कभी कभी क्या होता है, ये शक्ति हाथ से निकल जाती है और बड़ा अपघात हो जाता है। कितनी बार हम देखते हैं, बस थोड़े दिन पिछले हफ्ते गोकुल धाम में हम गए थे, तो लौटते समय वहां बाहर जब मैं जा रहा था मंदिर में लौटने के लिए यहां पर, तो वहां थोड़े लोग आए, उनकी गाड़ी का अपघात हो गया था। वो सीधे जो रास्ते के पास में गटर खड्डा है उसमें जाके गाड़ी गिर गई, बच गई, बाल बाल बच गए ये लोग। थोड़ी बहुत चोट पहुंची, क्यों? रोम जल रहे थे। और फिर हाथ से बाहर निकल गया और अपघात हो गया। इसलिए हम सदैव भक्तों को बताते हैं, गाड़ी चलाते समय देखिए, ये मत सोचिए कि भगवान हमारे साथ है, हम कृष्ण के भक्त हैं। नहीं, एक पुराण है जिसको कहते हैं वाहन पुराण। इस वाहन पुराण में कहा गया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ज्यादा चलने से भगवान उतर जाते हैं गाड़ी से। हाँ, तो इसलिए ऐसे झूठे भरोसे पे चल के कि हम कुछ भी कर लेंगे, जोर से चलाएंगे और हमेशा गाड़ी को नियंत्रण में रख पाएंगे, नहीं। हम नियंत्रण में हर चीज को नहीं रख सकते, अपने आप को भी नहीं रख सकते, गाड़ी को क्या रखेंगे। अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। परंतु ये दशा जो है ये भगवान की नहीं है। भगवान परम शक्तिमान होने के कारण उनके जितने भी शक्तियां हैं वो सदैव उनके वश में रहती हैं, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। कभी भी भगवान की शक्तियां भगवान की इच्छा के विरोध में कोई कार्य नहीं करती हैं। इसलिए तो कृष्ण भगवान कहलाते हैं ना। यदि सारी शक्तियां सदैव हमारे वश में रहती तो हम फिर बद्ध नहीं होते, हम मुक्त हो जाते। तो ये है भगवान का स्थान। और काल क्या है? काल उनकी शक्ति है। तो भगवान कहते हैं कालह कलयताम अहम, भगवत गीता के 10वें स्कंद में। कलयताम अर्थात जो दमन करने वाली शक्ति, दमन करने वाले वस्तु ये शक्तियां हैं, उनमें से मैं काल हूं। दमन करना, दमन करने के लिए बहुत सी चीजें होती है ना, उनमें से काल सबसे खतरनाक है। क्योंकि काल जैसा दमन करने वाला वस्तु कोई नहीं है। भले कोई बहुत शूर वीर और शक्तिशाली राजा हो, अन्य राजाओं को का दमन भले कर ले वो, अन्य राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त भले कर ले वो, परंतु काल को वो पराजित नहीं कर सकता। काल उस राजा का दमन कर लेगा। कहां गए वो राजा सिकंदर? सारे विश्व भर के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया, ऐसे कहते हैं। कहां गए वो अकबर? ऐसे जो राजा थे सिकंदर या अकबर, उनको द ग्रेट कहा जाता, अकबर द ग्रेट, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान। परंतु नहीं रहे ना। तो काल का प्रभाव इन पर रहता है। काल सबसे बड़े दमन करने वाली शक्ति है। और उसी अध्याय में भगवान कहते हैं एवं एवाक्षयः अहम् एवाक्षयो अहम्। एव अक्षय अहम कि मैं अहम एव अक्षय कालो कि मैं अक्षय काल हूं स्वयं। अक्षय अर्थात जिसका कोई क्षय नहीं होता, जिसका कोई घटन नहीं होता है। अन्य जितने भी चीजें हैं उनका घटन होता है, क्षय होता है, तो काल का क्षय नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैं ही वो काल हूं, अक्षय काल हूं मैं, अहम एवाक्षय काल है। तो भगवान कैसे कहते हैं कि मैं काल हूं और फिर वो कहते हैं कि मेरी शक्ति है? क्योंकि शक्तिमान और शक्ति में अभिन्नता होती है। इस दृष्टि से भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तः। क्षयकृत, क्षयकृत मतलब क्षय करने के लिए। तो भगवान कहते हैं मैं ही काल हूं और ये काल शक्ति क्यों है? हर चीज का विनाश करने के लिए। लोकान समाहर्तुं इह प्रवृत्तः, मैं यहां आया हूं हर चीज का विनाश करने के लिए। तो इस भौतिक सृष्टि में काल विनाशकारी शक्ति है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, काल रूप में मृत्यु आती है। जो लोग नास्तिक है ना, जो कहते हैं भगवान को नहीं देखते, नहीं जान सकते, भगवान को नहीं मानते, तो भगवान दर्शन देंगे उनको जब काल रूप में आएंगे। मृत्यु का भयंकर रूप जब आएगा उनके सामने तो भगवान अपने आप को दर्शाएंगे, परंतु अपने सुंदर श्याम सुंदर गोविंद बांसुरी बजाने वाले रूप में नहीं, भयंकर काल रूप में आएंगे, मृत्यु के रूप में आएंगे। मृत्यु सर्व हरश्चाहम, सब कुछ हर लेंगे। इसलिए भगवान का नाम है हरि, ये सब कुछ हरण कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए काल एक शक्ति है और काल उनकी सेवा में तत्पर रहती है। हमारे लिए काल का प्रभाव क्या होता है? बार बार हमें शरीर बदलना पड़ता है। एक शरीर थोड़े समय के लिए रहा, काल के प्रभाव से वो नष्ट हो जाता है। वो छह प्रकार की परिवर्तन होते हैं ना, जिनका वर्णन मैंने पहले किया। तो जब शरीर का विनाश हो जाता है तो दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, चौथा शरीर। तो इस प्रकार से काल के प्रभाव से ऐसे समय समय पर हमें शरीर मिलते रहते हैं, परंतु भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान के लिए काल एक सातत्य है। सातत्य अर्थात जो एक अनंत प्रवाह है, और भगवान के क्रियाकलापों में, भगवान के शरीर में, दिव्य शरीर में ऐसे काल कोई विनाशकारी कार्य नहीं कर सकता है। तो काल, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, तो हमें भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। जैसे प्रकृति भी भगवान की शक्ति है ना, तो प्रकृति का सदुपयोग हम करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। जैसे हम भगवान की आरती उतारते हैं ना, तो जब हम धूप अर्पण करते हैं, इसका मतलब है पृथ्वी तत्व जो है हम अर्पण कर रहे हैं। दीप अर्पण कर रहे हैं तो अग्नि तत्व अर्पण कर रहे हैं। पंखा चामर आदि अर्पण करते हैं तो हम वायु तत्व अर्पण कर रहे हैं। जल शंख में डाल के अर्पण करते हैं, जल तत्व को अर्पण कर रहे हैं। शंख बजाते हैं, ध्वनि तत्व को अर्पण कर रहे हैं। और साधारणतः हमारे जीवन में भी हम देखते हैं ये सारी चीजें हैं। जैसे ये माइक्रोफोन है, एक उपकरण है ये, इसका प्रयोग हम कृष्ण की वाणी को फैलाने के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहां पर पेटी है, मृदंग है, करताल है, ये ईंटें हैं, पत्थर हैं जिनसे ये मंदिर बना हुआ है। ये सब प्रकृति के बने हुए हैं, परंतु इनसे एक मंदिर बना है। तो क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है, तो प्रकृति का प्रयोग शक्तिमान के लिए करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि काल भगवान की शक्ति है, तो काल का प्रयोग भी केवल भगवान कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। और खास करके मनुष्य देह, मनुष्य जीवन में क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। जैसा कि प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं, आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। यदि हम बीते हुए एक क्षण को भी वापस ले आना चाहते हैं तो कोटि सोने की जो सिक्के होते हैं उनको देकर भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो बीत जाता है वो बीत ही जाता है। जितना भी धन हमारे पास हो, बीते हुए क्षण को हम वापस नहीं ले आ सकते। इसलिए मनुष्य जीवन विशेष रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए है। और जो लोग मनुष्य जीवन का प्रयोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं करते हैं, उनके लिए काल चक्र कैसे हो जाता है कि मानो एक सांप है, काल सर्प भी कहते हैं इसको। देखिए कितनी उपमाएं दी गई हैं, काल चक्र, काल नदी, काल सर्प। काल सर्प अर्थात एक बहुत बड़ा अजगर। अजगर सांप होता है, वो अपना मुंह बहुत बड़ा ऐसे खोल देता है और जो भी प्राणी होते हैं उनको मुंह में लेके निगल देता है। जब अजगर निगलता है ना, आपने कभी देखा है अजगर को किसी पशु को निगलते हुए? वो एकदम से निगल लेता है क्या? धीरे धीरे धीरे, एक बार उसको पकड़ लेता है ना, पकड़ के धीरे 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 से अपने अंदर ले लेता है। और वो जानवर बड़ा तड़फड़ाता रहता है वहां पर, परंतु कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये इसकी जो पकड़ है इतनी सख्त है कि वो छूट नहीं सकता जानवर। और धीरे 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 से उसको निगलने लगता है और धीरे से सारा शरीर उसका उस अजगर के शरीर के अंदर चले जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जैसे ही हमारा जन्म हुआ है मृत्यु का संकेत मिल जाता है, मृत्यु होनी है। तो सांप ने हमें निगल लिया है, जैसे ही हम मां के गर्भ में आ जाते हैं जन्म के पहले ही मृत्यु रूपी मृत्यु रूपी सांप ने हमें पकड़ लिया है। और धीरे 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 हम अंजर जाते हैं। कई बच्चे गर्भ के अंदर मर जाते हैं, कई गर्भ के बाहर आके मर जाते हैं, फिर कई लोग 100 साल तक जीते हैं, कोई 50 तक, कोई 20 तक। जैसे जैसे जिसके भाग्य है वैसे इसके जीवन की अवधि होगी। परंतु बात यह है कि काल सर्प निगलता है, धीरे धीरे हम सबको निगल लेता है और कोई छूट नहीं सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आयुर हरति वै पुंसान उद्यन अस्तम च यन असो तस्यर्थ यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। कि जैसे जैसे दिन बीतता है, सूर्योदय हो जाता है, फिर सूर्यास्त हो जाता है, तो हर एक सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद क्या होता है कि जो भी साधारण व्यक्ति है वो मृत्यु के एक दिन निकट पहुंच जाता है, सिवाय उस व्यक्ति के जो अपना समय भगवान कृष्ण उत्तम श्लोक के गुणगान में बिताता है। तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की वार्ता में यदि हम अपने समय को बिताएं तो उदित होने वाले सूर्य और अस्त होने वाले सूर्य हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है। हम अमृतत्व की अवस्था की ओर प्रगति करते रहेंगे। भले इस समय हम अमर न हो, ये शरीर का नाश तो होना है, परंतु यदि हमने हमारे मनुष्य जीवन में समय का सदुपयोग किया और भगवान की भक्ति करते रहे तो जब इस शरीर को त्याग देंगे उस समय फिर भगवान हमें उनके धाम में ले जाएंगे। इसलिए काल का सदुपयोग करने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्व स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नये दखिल मित्युपदेश सारम। वो कहते हैं तन नाम, तन मतलब कृष्ण, कृष्ण के नाम रूप गुण चरित आदि का क्या करना होगा, हमें संकीर्तन करना होगा, साथ साथ उनका स्मरण कीर्तन करना होगा। तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु, सु मतलब अच्छे ढंग से करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए। सुकीर्तनानु और अनुस्मृत्य है, बार बार स्मरण करना चाहिए क्रमेण। तो इस प्रकार से क्रम से जैसे जैसे हम करते जाएंगे, रसना मनसी नियुज्य, तो हम मन प्रसन्न होता जाएगा और ये सारी चीजें रसमय होने लगेंगी। तिष्ठन व्रजे, और हमें व्रज में निवास करना चाहिए, और हम व्रज तो नहीं जा सकते, इसलिए अपने रहने के स्थान को ही हमें व्रज बनाना चाहिए, वृंदावन बनाना चाहिए। और जो व्रजवासी हैं, कृष्ण भगवान के जो अनुयायी हैं इत्यादि, उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हुए हमारे समय का उपयोग करना चाहिए। कितना समय? संपूर्ण समय। कालम नयेद अखिलम, हमारा अखिल समय। नयेद मतलब प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, यह समस्त प्रकार के उपदेशों का सार है कि हमारे समय का हम इस प्रकार से सदुपयोग करें। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मनुष्य जीवन जो है बस क्षणभंगुर है, 50 60 70 80 साल की अवधि होती है, तो इसमें हम कितना कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही अर्थदम, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये अर्थदम बहुत मूल्यवान है शरीर। भले हमारे जीवन की अवधि लंबी ना हो देवताओं की तुलना में, परंतु यदि हमने भगवान कृष्ण की भक्ति के रास्ते को स्वीकार किया है, हमारे जीवन को यदि श्री प्रभुपाद जी ने दिए हुए आदेशों के अनुसार हम बिता रहे हैं, तो इस छोटे से जीवन का भी हम उपयोग सही तरह से करके भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। और ये अवसर हो सकता है अनेक देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो। काल का अंतर तो होता है, ऐसे कई कीड़े होते हैं जिनका जन्म और सारे जीवन और फिर मृत्यु बस एक दो घंटे में हो समाप्त हो जाती है। रात के समय उनका जन्म होता है और सूर्योदय के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हमें लगता है कि उनका जीवन कितना छोटा है, उन्हें ऐसे नहीं लगता। उन्हें लगता है कि वो अपना संपूर्ण जीवन बिता चुके हैं, उनके लिए 100 साल है, वो 80 साल जो भी है, लेकिन हमें लगता है कि अरे एक घंटे में सब हो गया उनका जीवन। कितने पशु हैं जिनके जीवन की अवधि कम रहती है, जैसे गाय बैल होते हैं 20 22 25 साल तक रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर उनकी मृत्यु होती है। लेकिन उनको नहीं लगता कि हमारे केवल 20 साल बीत गए, उनको लगता है कि हमारे पूरे 100 साल बीत गए, हमारा पूरा जीवन बीत गया। मनुष्य जीवन में हम रहते 50 60 70 80 साल 90 साल, और आगे ऊपरी लोकों में जाएंगे तो वहां देवलोक के जो निवासी हैं उनके जो 24 घंटे हैं हमारे लिए एक पूरा साल है। तो यहां जब एक साल बीत जाता है हमारे लिए, वो देवलोक में केवल 24 घंटे हैं। तो देखिए काल का अंतर है ना। और देवताओं की तुलना में ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि तो बहुत लंबी है। वैसे ब्रह्मा जी की जीवन की अवधि कितनी है, कोई बता सकते हैं? कोई आंकड़ा दे सकते हैं आप इसके लिए? हाँ, सारे ब्रह्मांड की अवधि, जीवन की अवधि है ये, परंतु कोई अंक बता सकते हैं, आंकड़ा? तो करोड़ों में बताइए हिंदी में कितना होगा? 31 लाख करोड़। केवल 31 करोड़ नहीं, 31 लाख करोड़। यह है ब्रह्मा जी की जीवन की अवधि, जो भी देवताओं की तुलना में भी बहुत लंबी है। परंतु ब्रह्मा जी को नहीं लगता कि मेरी जीवन की अवधि इतनी लंबी है। ब्रह्मा जी को लगता है कि मेरे जीवन की अवधि 100 साल की ही है। तो हर एक को अपने अपने दृष्टि से लगता है कि अपना जीवन पूर्ण जीवन है। अपने अपने दृष्टि से सबके 100 साल बीते जाते हैं। तो इसलिए इसमें ये काल की सापेक्षता का विचार भी होता है। जैसे कीड़े से लेकर जानवर, जानवर से लेकर मनुष्य, पृथ्वी लोक के ऊपर, फिर देवलोक, ब्रह्म लोक, और ब्रह्मा जी की जो जीवन की अवधि है 31 लाख करोड़ वर्षों की, वो महाविष्णु के लिए कितना है? एक सांस। और महाविष्णु को नहीं लगता है कि कितना लंबा सांस ले रहा हूं। आप में से जो प्राणायाम करते हैं आपको मालूम है, अनुलोम विलोम करते हैं ना, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो पहले सांस अंदर लेते हैं, फिर सांस को रोक के लेते हैं, फिर सांस को छोड़ते हैं दूसरे नसिका से। तो इसमें क्या कहते हैं कि 2 गिनने तक सांस अंदर लेना चाहिए 1 नसिका से, 4 गिनने तक सांस को रोक के रखना चाहिए, और 8 गिनने तक सांस को दूसरे नसीके से छोड़ना चाहिए। तो तकलीफ कहां होती है? सांस को रोक के रखने में। कितना हम सांस को रोक के रख सकते हैं? हमें लगता है अरे कितना रोक लिया हमें सांस, परंतु वास्तव में ज्यादा नहीं। हमें लगता है अब सांस साधारण तरह से हम ले रहे हैं तो ऐसा लगता है बस सांस तो एक क्षण में बीत गया। तो महाविष्णु को भी वैसे ही लगता है, मेरा एक सांस ही है ये। परंतु उनके सांस की तुलना में सारा ब्रह्मांड यहां नष्ट, उसका सृजन होता है, पालन होता है, विनाश भी होता है। ब्रह्मा जी भी जन्म लेते हैं, मर भी जाते हैं महाविष्णु के एक सांस में। और महाविष्णु की जीवन की अवधि कितनी है? कोई अवधि नहीं, अनंत, अनादि और अनंत। और इस प्रकार से महाविष्णु के स्तर में जो काल का भाव है, काल का प्रवाह है, वो हमसे बहुत अलग है। और ऊपर जाइए, वैकुंठ जगत में जाइए, गोलोक वृंदावन में क्या होता है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः। क्या अर्थात इसका? समयः यत्र, यत्र मतलब वहां इस गोलोक वृंदावन में, समयः जो काल है, न व्रजति, वो बहता नहीं है। जैसे यहां काल प्रवाहित होता है ना, बहता है ना, वहां नहीं बहता। निमेश अर्ध, निमेषार्धाख्यो वा नहीं व्रजति, तो एक आधे क्षण के लिए भी वहां पे काल बहता नहीं है। यहां जब काल बहता है तो बहने के बाद भूतकाल उत्पन्न हो जाता है, परंतु गोलोक वृंदावन में ऐसे नहीं है। वहां श्री कृष्ण उनके पार्षदों के संग सदैव अपने दिव्य क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। क्रियाएं होती हैं वहां पर, लीलाएं होती हैं, परंतु काल का प्रभाव जो है वो उस तरह से नहीं होता वहां पर जैसे यहां पर होता है। यहां पर काल का प्रभाव है विनाशकारी, विनाशकारी शक्ति है, रस को भंग करने वाली शक्ति है। परंतु गोलोक वृंदावन में काल बहता है, परंतु भूत काल नहीं पैदा करता, भविष्य काल नहीं पैदा करता। वहां वर्तमान काल में ही सब कुछ चलता है, भगवान की लीलाएं होती रहती हैं, इसलिए सब कुछ सदैव सब ताजा ही रहता है। घिसा पिटा कुछ भी नहीं लगता वहां पर। काल का प्रभाव गोलोक वृंदावन में इस प्रकार से है कि वो लीलाओं को रसमय बनाता है, रस की वृद्धि होती है। परंतु भौतिक जगत में क्या होता है? रस को कड़वा बना देता है काल। तो वही शक्ति है काल शक्ति, परंतु भौतिक जगत में काल शक्ति एक प्रकार से कार्य करता करती है और गोलोक वृंदावन में दूसरे प्रकार से। जिस प्रकार से महामाया भौतिक जगत में एक प्रकार से कार्य करती है और योग माया आध्यात्मिक जगत में दूसरे प्रकार से कार्य करती है। तो ये जो काल की सापेक्षता है पृथ्वी लोक में कीड़ों के स्तर से लेकर गोलोक वृंदावन तक, ये इसके बारे में थोड़ा आधुनिक विज्ञान में भी आजकल लोग बोल रहे हैं पिछले एक शतक से। ये तो बात हमारे शास्त्र में कब से कही गई है, काल निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष क्या होता है, जो किसी अन्य वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं है, परंतु काल निर्भर है। पृथ्वी लोक के ऊपर, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, महाविष्णु के स्तर में काल का अंतर है ना। तो काल निर्भर है परिस्थिति और स्थान के ऊपर। तो ऐसे एक सापेक्षता, निरपेक्षता नहीं, सापेक्षता है काल का यहां पर इस भौतिक जगत में, परंतु आध्यात्मिक जगत में काल भगवान की लीला में सहायता करता है, उसको और रसमय बनाता है। यदि हमें भी काल के उस रूप को देखना है तो हमें यहां पर काल के इस रूप का सही उपयोग करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अधिक से अधिक समय बिताकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है क्या आपके आज के प्रवचन से संबंधित? हाँ, काल का प्रवाह रहता है परंतु जिस प्रकार से यहां होता है उस प्रकार से नहीं होता है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो वर्तमान और चलता है, फिर वर्तमान ही चलता है। ये हमारे चिंतन शक्ति के बाहर है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी आदत है ना प्रकृति और काल के अंतर्गत सब कुछ सोचने के लिए, क्योंकि इसके बाहर हमें कुछ पता ही नहीं है, अनुभव नहीं है। तो ऐसा कोई स्थान हो और ऐसे कोई परिस्थिति हो जहां पर प्रकृति वश में हम नहीं कर ले और काल भी ऐसे बहे कि सब रसमय हो जाए, ऐसे स्थान का अनुभव नहीं है हमें, तो ये हमारे चिंतन शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे अचिंत्य कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी, अच्छा प्रश्न ये है कि परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन किया जब वो कि अपने माँ के गर्भ में थे। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और हम बाहर आते हैं तो हमें क्यों नहीं याद रहता? क्यों हमारी रक्षा करने के लिए भगवान हमारे माँ के गर्भ में नहीं आए थे और हमें दिखे नहीं वो? हाँ, परीक्षित महाराज को दिखे, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने परीक्षित का वध करने की, हत्या करने के लिए, वध नहीं, हत्या करने के लिए, तो उस समय श्री कृष्ण परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और गर्भ से गोल 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 घूमने लगे अपने चतुर्भुज रूप में, प्रकाशमान रूप में, और परीक्षित जो बच्चे थे वहां पर, वो देखते रह गए आश्चर्यचकित होकर, ये कौन है कौन है। तो वो दृश्य परीक्षित ने देखा, हम नहीं देखते। हम साधारण जब जन्म लेते हैं तो हम में से कोई नहीं देखता ऐसे दृश्य। ठीक है। प्रश्न ये है कि ऐसे हमने सुना है कि माँ के गर्भ से निकलते हैं जब उस समय प्रार्थना करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ के गर्भ से निकलते हैं तो सारी प्रार्थनाएं भूल जाते हैं जो भी है भी। माँ के गर्भ से बाहर आते समय इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है माँ को भी बच्चे को भी, दोनों सब कुछ भूल जाते हैं। बच्चे को तो याद रहता ही नहीं है। और बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तब उसकी बाह्य चेतना जब प्रकट होने लगती है सातवें महीने में लगभग, तो विरला ही कोई ऐसे दुर्लभ होगा जीव जो ऐसे प्रार्थना करता है जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रत्येक जीव इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करता है। जो विशेष कोई जीव हो वो मात्र ऐसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनकी चेतना उतनी विकसित हुई होती है। ठीक है।